नमस्कार भारत, तारीख 12 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों को एकमत से दी मंजूरी, बंद होंगे कमाई के स्रोत। गुरुग्राम के रायन स्कूल में बेटे की हत्या के बाद इंसाफ के लिए पिता का संघर्ष, बीबीसी के साथ बयां किया दर्द।
चोट का निशान था, अगर वो मेरा बच्चा नहीं होता तो शायद मैं देखने नहीं जाता। इतना बुरा था कि एक नजर देखने के बाद उसको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर सकता।
और कर्ज माफी की मांग को लेकर राजस्थान के शेखावटी इलाके में सड़कों पर जमे किसान, सरकार को दिया दो टूक संदेश।
सरकार नहीं मानेगी तो कोई भी कदम होगा, राजस्थान में चक्का जाम होगा।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया पर परमाणु परीक्षण करने के लिए लगाए गए हैं। रूस और चीन ने भी नए प्रतिबंधों पर अपनी रजामंदी दी है। प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया को मौजूदा तय सीमा तक ही कच्चे तेल का निर्यात किया जा सकेगा, साथ ही उत्तर कोरिया भी टेक्सटाइल का निर्यात नहीं कर सकेगा। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को रजिस्टर्ड करने का बड़ा अभियान शुरू किया है। फिलहाल 2 आधिकारिक शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। लंदन में बांग्लादेश के उच्चायुक्त MD नजमुल कोएनिन ने बीबीसी को बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। अमरीकी प्रांत फ्लोरिडा में इरमा तूफान के कहर के बाद अब राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने कहा कि अभी प्राथमिकता अस्पतालों की मदद और लोगों की जान बचाने की है। रिक स्कॉट ने कहा,
There's devastation. I just hope everybody...
ये तबाही थी, जो हमने देखा वो भयावह था। सब कुछ सही होने में अभी लंबा समय लगेगा, बहुत नुकसान हुआ है। मैं जानता हूँ कि हर कोई जल्द से जल्द सामान्य होना चाहता है। बिजली, पानी और सीवर सुविधाएं सुचारू करने की आवश्यकता होगी, लेकिन सब ठीक होने में समय लगने वाला है। ये थे फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल ने कहा है कि रूस पर लगे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध उसी सूरत में हट सकते हैं जब यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से संघर्ष विराम लागू हो। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम बने रहने की स्थिति में रूस के खिलाफ प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटाए जा सकते हैं। कैटालोनिया के हजारों लोगों ने सोमवार को स्पेन के शहर बार्सिलोना में प्रदर्शन किया और स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लगभग 2000 बसों में भरकर बार्सिलोना पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। कैटालोनिया के राष्ट्रपति कार्ल्स प्यूगडेमोंट ने कहा कि स्पेन की सरकार जनमत संग्रह को नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा, जनमत संग्रह होकर रहेगा, इसका जश्न अभी से मनाया जा रहा है। स्पेन की सरकार ने अब तक इसे रोकने की हर संभव कोशिश की है। हो सकता है कि अगले 20 दिनों में वे इसे रोकने की नई तरकीबें लाएं, लेकिन मेरे ख्याल से इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मतदान। ये थे कैटालोनिया के राष्ट्रपति प्यूगडेमोंट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब का कहना है कि उसने रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में यमन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 सऊदी नागरिकों को भी साजिश में शामिल होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। मिस्र के उत्तर सिनाई में अशांत अल आरिश शहर में कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने 18 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। IS लड़ाकों ने पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 8 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बच्चा जब यहाँ आया था उस समय पर उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी।
एक पिता जो अपने हंसते मुस्कुराते बेटे को स्कूल छोड़कर आए हो और 15 मिनट के बाद उन्हें जानकारी हो कि बेटे के जिस्म से खून बह रहा है और अगले कुछ मिनट के बाद बेटे की मौत की जानकारी मिले, आसान नहीं है उनके दर्द उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाना। बीते शुक्रवार गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के जिस बच्चे की हत्या हो गई थी उसके पिता ने बीबीसी के साथ उन लम्हों की यादों को साझा किया है। नमस्कार भारत में हम आज इंसाफ के लिए और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए उनकी जंग की बात करेंगे। बात राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों के दर्द और संघर्ष की भी होगी। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगी उनके लिए कितनी बड़ी जंग बन गई है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर कोरिया की। हाल ही में हाइड्रोजन बम बनाने का दावा करने वाले उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ये जानकारी अब से कुछ घंटे पहले ही आई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मोहनलाल शर्मा।
जैसा कि वास्तव में आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया ने बीती रात 3 सितंबर को दावा किया था कि उसने परमाणु बम विकसित कर लिया है और उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इसे मिसाइल पर लोड किया जा सकता है और कहीं भी दागा जा सकता है
जी।
और इसे लेकर ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उस पर नए प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। प्रतिबंध का ड्राफ्ट अमरीका ने तैयार किया था और इसे चीन व रूस समेत सभी 15 सदस्यों ने मंजूरी दी। नए प्रतिबंधों के जरिए उत्तर कोरिया के आय के स्रोत बंद करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस तरह की कोशिशें पहले भी की जाती
थी, पहले भी शायद 9 बार प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।
कपड़ों के निर्यात पर रोक को मंजूरी दी गई है और कच्चे तेल के आयात पर भी बंदिशें लगाई गई हैं। चीन ने उत्तर कोरिया से प्रतिबंधों को गंभीरता से लेने और परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए कहा है। साल 2006 से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया के खिलाफ 9 प्रस्तावों को एक मत से मंजूरी दे चुकी है। वात्सल्य
जी, बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी। दुनिया सिर्फ उत्तर कोरिया के अगले कदम को लेकर चिंतित नहीं है बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों के संकट को लेकर भी फिक्रमंद है। म्यांमार में रोहिंग्या विद्रोहियों ने 2 दिन पहले संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 हफ्तों के दौरान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश गए रोहिंग्या मुसलमानों की तकलीफें कम नहीं हुई हैं। इस संकट पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिनेश उप्रेती।
बांग्लादेश ने शुरुआती नानुकर के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को रजिस्टर्ड करने का बड़ा अभियान शुरू किया है। फिलहाल 2 आधिकारिक शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश सरकार अभी शिविरों से बाहर रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने से बच रही है। बांग्लादेश की इस पहल से रोहिंग्या मुद्दे को भविष्य में कूटनीतिक स्तर पर उठाने में मदद मिलेगी। लंदन में बांग्लादेश के उच्चायुक्त MD नजमुल कुएनिन ने बीबीसी को बताया कि बांग्लादेश में म्यांमार से बड़ी तादाद में आ रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या विस्फोटक रूप ले रही है। नजमुल ने कहा,
It's a very difficult and dire situation, as you understand. You know, we already have 400,000 Rohingya population inside Bangladesh.
आप भी समझेंगे कि ये हालात बेहद कठिन और खतरनाक हैं। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान पहुंच चुके हैं। ये संख्या पिछले दिनों बांग्लादेश सीमा में घुसे 3 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों से अलग है। इन हालात में बांग्लादेश सरकार पर जबरदस्त दबाव है। ये थे बांग्लादेश के उच्चायुक्त नजमुल के शब्द। बांग्लादेश ने रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए दूसरे देशों से सहायता की अपील की है ताकि राहत कार्यों को तेजी से चलाया जा सके। स्थिति इसलिए भी और गंभीर हो गई है क्योंकि म्यांमार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। नजमुल ने कहा,
That is the urge that the government of Bangladesh has made to the international community, and we have to.
Bangladesh सरकार चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रोहिंग्या की मदद के लिए आगे आए, ताकि रोहिंग्या को सिर्फ हालात के भरोसे न छोड़ा जाए. ये लोग भूखे हैं और उनके पास जिंदा रहने के लिए मूलभूत चीजें भी नहीं हैं. हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं. ये थे बांग्लादेश के उच्चायुक्त नजमुल के शब्द. म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी लगभग 10 लाख है, लेकिन उनकी जिंदगी प्रताड़ना, भेदभाव, बेबसी और मुफलिसी से ज्यादा कुछ नहीं है. ऐसे में ये नया संकट उनके लिए जिंदगी से जूझने की एक नई जंग से कम नहीं है.
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती.
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो.
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी.
अगली खबर भारत में हरियाणा के गुरुग्राम से. गुरुग्राम के रायन पब्लिक स्कूल में बीते शुक्रवार को जिस बच्चे की हत्या हुई थी, वो सुबह बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी उनके स्कूल के गेट में दाखिल होने के सिर्फ 15 मिनट के बाद ऐसे मातम में बदल गई जो उनके माता पिता के आंसुओं को अब तक नहीं थमने दे रहा है. सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट.
7:55 से 8:10 के बीच का वो वक्त, वो 15 मिनट, जब वो पिता को बाय कहकर स्कूल गेट से भीतर गया और फिर जब रायन इंटरनेशनल स्कूल से उसकी माँ को फोन आया. शुक्रवार का वो दिन वरुण चंद्र ठाकुर को कुछ इस तरह याद है.
नॉर्मल रूटीन डे था. बच्चे के लिए थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, तो बहुत हैप्पीली उस दिन रेडी होके खुद तैयार होके और गया था. डॉटर का एग्ज़ाम था, पेपर्स थे, तो वो भी अपना प्रिपरेशन करके गई थी. यूजुअली 7:45 पे मैं निकला, 7:55 मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, अराउंड 7:55, 2 मिनट इधर ही आऊँ. ड्रॉप करके मैं वापस आया. जैसे ही घर वापस पहुँचा हूँ, इट्स अराउंड 8:10, तो मेरी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आता है.
वरुण चंद्र ने बेटे और बेटी को स्कूल छोड़ने और लाने का काम इसी माँ से शुरू किया था. पहले वो स्कूल वैन से जाते थे. स्कूल से आए फ़ोन के बारे में वो कहते हैं.
तो वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आया रिसेप्शन से कि आप प्लीज़ इनकी जो सुपरवाइज़र हैं जूनियर इनकी, उनसे बात कर लें. मैंने कॉल की, बात की, उन्होंने कहा कि बच्चा हमें बाथरूम के बाहर मिला है और वो बहुत हैवीली ब्लीडिंग हो रही है उसको.
हालांकि उनकी पत्नी ज्योति ठाकुर फ़ोन सुनकर रोने लगी, लेकिन वरुण चंद्र को लगा था कि मामला उतना सीरियस नहीं.
मैं ये सोच रहा था कि कहीं चोट लग गई होगी, कहीं इंटरनल कुछ चोट होगा, नाक से ब्लड आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा. हम यहाँ से चले मेन रोड पर, जब तक पहुँचा तब तक फिर दोबारा फ़ोन आया उनका कि हम उसको बच्चे को एम्बुलेंस में आर्टेमिस ले जा रहे हैं, आप आर्टेमिस जा रहे हैं. हम आर्टेमिस पहुँचे, इमरजेंसी में बच्चा था. जैसे ही मैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बच्चा जब यहाँ आया था उस समय पर उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी.
दिल्ली से सटे शहर गुरुग्राम के प्राइवेट रायन स्कूल में शुक्रवार सुबह एक बच्चे का बाथरूम में मर्डर कर दिया गया था, जिसके आरोप में पुलिस ने स्कूल के एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है. कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर अपनी याचिका की सुनवाई के बाद दूसरे कई जगहों के चक्कर लगाते घर पहुंचे वरुण चंद्र ठाकुर के चेहरे पर एक साथ कई भाव तैर रहे थे. खोने का और उस दिन को याद करने का दुख, जीवन संगनी पर जो बीत रहा है उसको ना कम कर पाने का दुख और बेपनाह थकन. कहते हैं, इंटरव्यू दे देकर मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन लड़ाई जारी रखनी है तो करना होगा. कमरे की पलंग पर बिना चादर का फूलदार गद्दा, तकियों पर आधे चढ़े कवर, उस पर फैले बेतरतीब कपड़े साफ बयां कर रहे हैं कि उस घर पर क्या बीत रही है जिसने अपना 7 साल का बच्चा खो दिया है. लंबी सांस लेते हुए वो कहते हैं,
और जो चोट का निशान था, अगर वो मेरा बच्चा नहीं होता तो शायद मैं देखने नहीं जाता. मतलब इतना बुरा था कि मतलब कोई आदमी एक नज़र देखने के बाद उसको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था.
बेटे का स्कूल में दाखिला करवाने में वरुण ठाकुर को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत होशियार था, बड़ा हंसमुख भी था. उस दिन स्कूल जाते वक्त भी वो बहुत खुश था. उसके दोस्त का बर्थडे जो था उस दिन, पुरानी कुछ यादें शायद उनकी आंखों के सामने घूम जाती हैं. मैं पूछता हूं कि उनकी बेटी भी रायन स्कूल में पढ़ती है, उसके बारे में क्या सोचा है उन्होंने. वो जवाब देते हैं,
इस स्कूल में तो कंटिन्यू कराने का सवाल बहुत मुश्किल है. मतलब वो बच्ची भी कैसे जाएगी, मैं ये मतलब अभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ मतलब अंदाज़ा लगा नहीं सकता मैं इस चीज़ का। बाकी अब तो सिचुएशन ऐसी है कि किसी और स्कूल में डालते हुए भी थोड़ा सा डर लगेगा।
एक पिता का डर, रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। उधर राजस्थान के शेखावटी इलाके में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर हैं। कई जिलों में किसानों ने मुख्यालय पर डेरा लगाया हुआ है। सुनिए नारायण बारेठ की ये रिपोर्ट।
कभी वे नारे बुलंद करते हैं तो कभी अपने संघर्ष के तरानों पर थिरकते हैं। शेखावाटी अंचल में खेत खामोश हैं, जबकि सीकर जैसे शहरों की सड़कें किसानों की भीड़ से गुलो गुलजार है। कोई दो माह पहले जब मार्क्सवादी पार्टी के पूर्व विधायक अमरा राम ने यह आंदोलन शुरू किया तो कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा आकार लेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही किसान सभा के संयुक्त सचिव संजय माधव अपनी मांगों के बारे में बताते हैं।
कर्जा माफी, संपूर्ण कर्जे माफ किए जाए। इसके अलावा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, जिसमें फसलों का लाभकारी दाम दिए जाने, किसानों को जो है और जो इनपुट में खर्चा बढ़ा है उसको कम कर सब्सिडी दी जाने, और दूसरे तमाम जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उसको लागू करने की मांग, जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान में किसानों से वादा किया था उसको पूरा करने की मांग है। ये पिछले लगभग 1.5-2 महीने से आंदोलन चल रहा है। इसमें जेल भरो आंदोलन हुआ, इसमें इसके बाद में किसान कर्फ्यू लगाया गया राजस्थान में।
इस आंदोलन में किसानों की हिमायत में व्यापारी आए हैं तो बैंड बाजा बारात से वास्ता रखने वाले 300 डीजे बैंड भी शामिल हुए हैं। पिछले कुछ समय में राजस्थान में किसानों की खुदकशी के मामले सामने आने लगे हैं। इन मौतों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में कोई हलचल नहीं हुई। खेत खलियानों में वेदना के स्वर फूटे और फिर खामोशी छा गई। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल सीकर के किसान हरफूल कहते हैं,
किसान अन्न पैदा करके इस पूरी दुनिया का पेट भरता है। धीरे धीरे इन सरकारों की नीतियों के कारण से खेती लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है, और उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार ने नीतियां ऐसी बनाई कि किसान जो फसल पैदा करता है उस फसल का भाव किसान को मिलता नहीं।
कांग्रेस का दावा है कि वो किसानों की मांगों के प्रति गंभीर है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा कहती है,
कांग्रेस हमेशा किसान के मुद्दे पर जिस वर में या किसी भी संगठन ने आंदोलन किया तो उसका साथ दिया है कांग्रेस ने, और हमने हमेशा नैतिक समर्थन आंदोलन को प्रदान किया। आपको विजिट होगा कि बांसवाड़ा में गद्दीन और राहुल गांधी जी आए थे तो हमने किसानों आक्रोश रैली का आयोजन किया था, लाखों किसानों ने इसमें शिरकत की। जिस समय स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों के विद्युत दरों को बढ़ाया था तब भी हमने स्टेट वाइड यहाँ पर एजिटेशन किया था और सरकार को मजबूर किया कि रेट को वापस। तो किसानों के प्रति तो हमारी हमेशा सद्भावना रही, इसकी आगामी समय में हम लोग स्टेट वाइड एक एजुकेशन की रूपरेखा तैयार करेंगे, प्रत्येक जिले में हम लोग उसका प्रोटेस्ट करेंगे और किसानों को साथ में लेकर सरकार की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बातचीत किया जाए।
खेतों में कहीं सरसों, कहीं बाजरा तो कहीं गंदम की फसलें मेहनत के सौंदर्य गीत सुनाती है, लेकिन किसान कहते हैं उसकी यही उपज बाजार तक जाते जाते शोक गीत में बदल जाती है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
जैसा कि नारायण जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, राजस्थान में किसानों के इस आंदोलन की शुरुआत पूर्व विधायक अमरा राम ने की। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने अमरा राम से बात की और उनके अगले कदम के बारे में पूछा।
11 सूत्री मांग पत्र है। पिछले 3 महीने से, वैसे तो पूरा देश मंदसौर के बाद पूरे देश का किसान लड़ रहा है, लेकिन पिछले 11 दिन से 14 जिला मुख्यालयों पे राजस्थान का किसान बैठा हुआ है।
ये बताएं कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने बात करने की कोशिश की है आपसे?
ना, कोई नहीं। कल उन्होंने डेलीगेशन की संख्या और नाम मांगे थे, हमने नाम दे दिए। आज उनका प्रस्ताव आया, हमने कहा आप आ जाइए और बात कीजिए। उनका हम सीकर नहीं आ सकते, तो उनका कल का समय देते हैं, 5 बजे आप आ जाइए। 5 बजे आ जाएंगे। आज भी अभी भी करना चाहते हैं तो हम सीकर में वार्ता करने को तैयार है। वो जहां भी करना चाहें हम वार्ता करने के लिए तैयार है।
अगर सरकार का रुख आगे भी ऐसा रहता है तो आपकी क्या रणनीति है?
सरकार इससे ज्यादा संवेदनहीन नहीं हो सकती। ये वार्ता जो अब वो जो वार्ता बुला रहे हैं 12 दिन के पड़ाव के बाद, वो 30 तारीख से पहले भी बुला सकते थे। सरकार नहीं मानेगी तो कोई भी कदम होगा। राजस्थान में तमाम किसान 5 करोड़ की तरफ से चक्का जाम होगा।
एक बात उठती है कि जैसे आंदोलन होते हैं, चक्का जाम होता है आंदोलनों को लेकर, तो उससे आम जनता को भी असुविधा होती है।
मतलब असुविधा, इस देश के 4 लाख किसान आत्महत्या कर ली, वो असुविधा नहीं है? आप तो असुविधा से भी परेशान हो रहे हो, लोगों की 4 लाख की जान चलेगी, एक दिन के लिए रास्ता रुक गया, वो परेशानी है? आलोचक तो ये कहते आंदोलन करना ही नहीं चाहिए, अंग्रेज भी यही कहते थे, सत्ता में बैठे लोग भी यही करते हैं।
ये थे पूर्व विधायक अमरा राम। सरकार से नाराज छत्तीसगढ़ के किसान भी हैं। वो सरकार की कथित वादा खिलाफी को लेकर सड़कों पर हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार बोनस की घोषणा के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल और 300 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी। शुरुआत के दो साल राज्य सरकार ने केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के पाले में गेंद डालकर चुप्पी साध ली, लेकिन अब अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को मनाने की कोशिश में जुट गई है। अकाल की हालत वाले छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य तो 1410 रुपये ही रह गया, लेकिन सरकार ने 300 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि सरकार की इस घोषणा का राज्य भर में विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राज्य में अपने इस फैसले को लेकर उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्षी दल सरकार के इस रुख से नाराज हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, संकल्प पत्र में घोषणा पत्र में कहा कि 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए का बोनस पांचों वर्ष देंगे। अब केवल एक दो साल का बोनस देके वो सोचते हैं छत्तीसगढ़ की जनता खुश हो जाएगी। इस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी न रहे।
छत्तीसगढ़ मजदूर किसान महासंघ के संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर का कहना था कि सरकार का यह फैसला महज चुनावी पैंतरा है।
सरकार ने किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया है। अगर वाकई में हित में निर्णय लिया होता तो 4 साल का बोनस का ऐलान करते माननीय मुख्यमंत्री जी, 0% ब्याज पे लोन देने की बात करते, मुफ्त बिजली की बात करते, 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात करते। एक भी संकल्प इनने पूरा नहीं किया।
विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी तो राज्य में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। किसानों को समर्थन मूल्य के बजाय महज बोनस देने से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल खासे नाराज हैं।
ये केवल चुनावी लालीपाप है। अभी भयंकर सूखे की स्थिति है। सूखे के लिए राहत देने की तत्काल फौरी तौर पर आवश्यकता है, वो तो देने, और इसको भी नवंबर में देंगे तो आज किसानों को क्या मिल रहा।
लेकिन राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल धान के लिए 2100 रुपए के समर्थन मूल्य के सवाल को टालते हुए बोनस को एक बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहे हैं।
जब एक अकाल की छाया छत्तीसगढ़ के ऊपर में है, ऐसे समय पर इस प्रकार का निर्णय दे और छत्तीसगढ़ के किसानों के दिलों में और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक छाप छोड़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति इस अकाल के समय पर मजबूत होगी और वो अपने परिवार को ठीक तरीके से पाल पाएंगे।
छत्तीसगढ़ में धान और 37 लाख किसान चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। धान पर दिए गए बोनस के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अगर अगले साल होने वाले चुनाव तक जिंदा रखने में कामयाब रही तो यह बोनस भाजपा के लिए महंगा साबित हो सकता है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और हमारे साथी दिनेश उप्रेती आ चुके हैं स्टूडियो में अखबारों के पुलिंदों के साथ बताने के लिए कि आज के अखबारों की सुर्खियां क्या हैं।
इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू समेत कई अखबारों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे को पहले पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं आहत हों।
जी,
इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर है जिसके मुताबिक नए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन निर्धारित समय से 1 साल पहले चल सकती है।
यानी उन्होंने बुलेट ट्रेन के बारे में ये बयान दिया है, सुरक्षा के बारे में सुरक्षा लोग जानना चाह रहे हैं।
मोदी सरकार ने पहली बुलेट ट्रेन 2023 तक चलाने का लक्ष्य रखा था, यानी कि अब 2022 में बुलेट ट्रेन चल सकती
जी।
है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आयकर विभाग 7 सांसदों और 98 विधायकों की आय की छानबीन कर रहा है। द हिंदू में छपी इस खबर के मुताबिक ये छानबीन इन सांसदों और विधायकों के चुनावी हलफनामों के शुरुआती सत्यापन के बाद की जा रही है, यानी कि इसके बाद जो उनकी छानबीन आई है शुरुआती जांच में, उसमें उनकी संपत्ति में बेशुमार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की हत्या के मामले में स्कूल के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर लगभग सभी अखबारों में है। खबर के मुताबिक स्कूल के CEO रियान पिंटो और डायरेक्टर अल्बर्ट पिंटो से भी पुलिस पूछताछ करेगी।
जी,
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने JP एसोसिएट्स को 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अमर उजाला के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में, लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। और पाकिस्तान से एक खबर है कि पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिर से शुरू करने की मुहिम शुरू हो रही है और विश्व एकादश की टीम वहां पहुंच चुकी है, जो कि 3 T20 मुकाबले खेलेगी। पहला T20 मुकाबला 12 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा।
यानी आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज उत्सुकता का दिन है। जी बहुत शुक्रिया दिनेश जी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमरीका के दौरे पर हैं। राहुल प्रवासी भारतीयों और छात्रों से वहां मुलाकात करेंगे। हाल में उन्होंने नॉर्वे का भी दौरा किया था। इस बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि राहुल के विदेश दौरों से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने।
कांग्रेस एक तरफ जहां प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी बताती हैं कि इस वक्त राहुल के विदेश दौरों से कांग्रेस को नुकसान होगा।
देखिए, राहुल गांधी की ये 8वीं यात्रा है जो पिछले करीब 1.5 साल में हुई है। ये कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से घातक है इस समय, क्योंकि कांग्रेस को इस समय जो जरूरत है, एक आम कार्यकर्ता को जो जरूरत है, वो राहुल गांधी के सपोर्ट की जरूरत है। और उसका मनोबल गिरा हुआ है। लोकसभा में बुरा प्रदर्शन के बाद लगातार हार रही है कांग्रेस, यहाँ तक कि पंजाब के अलावा वो कहीं जीती नहीं।
चर्चा है कि कांग्रेस विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंच बनाना चाहती है, मगर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा मानते हैं कि विदेश के इन दौरों से भारत में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला।
जो विदेश यात्रा से घर में क्या बदलाव आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को जरूरत है भारत में, अपने देश में जो उनका तंत्र है, जो उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मजबूत बनाना। और बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी विरासत है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस वहां पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही है। उड़ीसा को तो ऐसे मान के चल रही है कांग्रेस जैसे कि वो इस देश का हिस्सा ही नहीं। वहां पर कांग्रेस के एब्सेंटीज्म के चलते बीजेपी ने अपनी पैंट बनाई है। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपना जो पार्टी का जो उसका अस्तित्व है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फ्रेश ब्लड आए और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस का समन्वय हो।
कांग्रेस उपाध्यक्ष के विदेश दौरे उस वक्त हो रहे हैं जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह विभिन्न राज्यों में संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का कहना है कि बीजेपी 2014 में कांग्रेस की छवि भ्रष्टाचार वाली पार्टी के रूप में बनाने में कामयाब हो गई थी, मगर अब तक कांग्रेस नेतृत्व इस छवि से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा।
जब भी सरकार कहीं सत्ते में होती है, कि कहीं फंसी होती है किस मुद्दे पे, वो कांग्रेस की भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल देती है, कोई केस बना के उछाल देती है। तो इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। भारत में वही नेता माना जाता है जो पार्टी को इलेक्शन जितवाता है, और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस पार्टी को।
वरिष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी मानती हैं कि कांग्रेस भले ही प्रोफेशनल लोगों को लाने पर फोकस कर रही है, मगर जरूरत नेतृत्व के स्तर पर अहम फैसले लेने की है।
देखिए, अगर प्रोफेशनल आएंगे और अपने अपने तरीके से कांग्रेस की मदद करेंगे तो ये वाकई बेहतर स्थिति होगी। बात वहीं घूम फिर के आती है कि नेतृत्व अगर समझदार हो और नेतृत्व में ज्यादा जानकारी हो, समझदारी हो, उसको समय के हिसाब से अपने आप को ढालना आता हो, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ढलती चली जाती हैं। बाहर जाके बाहर के लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग बात है, पर पहले अपनी देश की राजनीति को अच्छी तरह समझें और उसके लिए रिजल्ट दें, वो ज्यादा बेहतर होगा राहुल गांधी के लिए।
राहुल गांधी के उपाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में दोनों विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी के विदेश दौरों का फायदा तब होता जब वो खुद को साबित कर चुके होते। आदर्श राठौर, BBC दिल्ली।
खोज करना इंसान की फितरत है। इंसान की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस अभियान का नाम है वॉयेजर। क्या है ये अभियान, अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस और चीन समेत सभी 15 सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान दिया। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को रजिस्टर्ड करने का बड़ा अभियान शुरू किया है। फिलहाल 2 आधिकारिक शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। अमरीकी प्रांत फ्लोरिडा में इरमा तूफान के कहर के बाद अब राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल ने कहा है कि रूस पर लगे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध उसी सूरत में हट सकते हैं जब यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से संघर्ष विराम लागू हो। कैटालोनिया के हजारों लोगों ने सोमवार को स्पेन के शहर बार्सिलोना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा दिन भर। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रुक कर सकते हैं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com का। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।